ओम शांति। 23 जून 1757 भारत में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 वो एक ऐसा युद्ध था कि जिससे भारत सदाकाल के लिए उस समय से अंग्रेजों का दास बन गया। बैटल ऑफ प्लासी वो युद्ध था, प्लासी का युद्ध, मुर्शिदाबाद के पास प्लासी नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ था, जहां पर भारत की हार हुई थी। और दास्ता की एक कहानी चालू हुई थी। वो युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला की सेना बहुत बड़ी थी, रॉबर्ट क्लाइव की सेना बहुत छोटी। रॉबर्ट क्लाइव यूरोप से, इंग्लैंड से निकला था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, परंतु यह युद्ध ऐसा हुआ कि इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की सेना और सिराजुद्दौला की सेना के बीच जो युद्ध हुआ, उसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। क्यों हार हुई, कोई बता सकेगा? क्यों हार हुई थी? इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है प्लासी का युद्ध, क्यों हार हुई थी? कोई भी? रॉबर्ट क्लाइव की सेना बहुत छोटी थी। उसने पत्र लिखा इंग्लैंड कि मुझे और सैनिकों की आवश्यकता है, कृपया सैनिक भेजे, परंतु उधर से जवाब आया कि नहीं। उस समय इंग्लैंड नेपोलियन बोनापार्ट के साथ युद्ध करने में लगा था और वो युद्ध इंग्लैंड के लिए अधिक महत्वपूर्ण था और सेना नहीं भेजी जाएगी, जितने सैनिक है उन्हीं से लड़ो। तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक युक्ति रची। उसने अपने जासूसों को लगाया और कहा कि ढूंढो कोई ऐसा व्यक्ति है सिराजुद्दौला की सेना में जो देशद्रोह करे। कौन था वो? मीर जाफर। युद्ध कुछ घंटे भी नहीं चला, क्योंकि मीर जाफर और उसके साथ के कुछ साथी रॉबर्ट क्लाइव से मिल गए। उसे धन का लोभ था, उसे लालच था पद का, वो बंगाल का नवाब बनना चाहता था। और जब दोनों सेनाएं आमने सामने आई तो सिराजुद्दौला की सेना ने हथियार डाल दिए, हार मान ली, क्योंकि मीर जाफर मिल चुका था और सिराजुद्दौला की हार हुई। वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत बैटल ऑफ प्लासी के बाद पूरे भारत पर हो गई और भारत धीरे धीरे गुलाम बन गया। मीर जाफर को गद्दारे वतन कहा जाता है। क्या किया उसने? ट्रेटर बना और अपने बादशाह को, अपने राजा को धोखा दिया। आज सुबह की अव्यक्त वाणी। तुम सब कौन हो? बेगमपुर के बादशाह हो तो तुम्हें क्या लगानी है, अपनी दरबार लगानी है। दरबारियों में कोई ऐसा दरबारी तो नहीं जो धोखा दे, ऐसा कोई दरबारी मीर जाफर बनकर तो नहीं बैठा है, ऐसा कोई दरबारी है जो दुश्मन से संधि कर ले। और ऐसे ट्रेटर का क्या हाल हुआ इतिहास में। बाद में मीर जाफर को बंगाल का नवाब तो बनाया, परंतु छल से उसको भी मार दिया। चाहे वो कन्नौज का राजा जयचंद हो जिसने मोहम्मद गजनवी के साथ संधि कर ली थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, चाहे वो मीर जाफर हो, चाहे वो टीपू सुल्तान का वह सैनिक हो, मंत्री जिसने अंग्रेजों के साथ दोस्ती कर ली थी, इन सब का परिणाम हुआ दास्ता, गुलामी। भगवान ने आज पूछा है, तुम सब हो बेफिक्र बादशाह, बिन कौड़ी बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, तो क्या कहो, क्या करो? तुम्हें अपनी दरबार लगानी है। सारे दरबारी यथार्थ चल रहे, कोई भी इंद्रिय धोखा तो नहीं दे रही है, कोई भी राज दरबारी जी हाजिर जी हुजूर सभी कर रहे हैं। यदि एक भी इंद्रिय धोखा दे तो बाकी सभी इंद्रियों को वो खींच लेती है। गीता में उदाहरण दिया है, भगवान कहते हैं कि जैसे कोई समुद्र हो और तूफान हो वहां पर, और कोई छोटी सी नाव हो, तो जैसे वो तूफान नाव को बहा कर ले चला जाता है, वैसे यदि एक भी इंद्रिय यदि तुम्हारे वश में नहीं तो वो बाकी सभी इंद्रियों को और संपूर्ण व्यक्तित्व को, संपूर्ण व्यक्ति को बहा कर ले जाएगी। ऐसी अपनी राज दरबार लगाओ। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जागो हुआ सवेरा, उससे हमें अंधकार पूर्ण रात्रि से जागना है। और सबसे पहली रात्रि है इंद्रियों की गुलामी। रात है, अंधेरा है, निद्रा है, तमस तिमिर, जो ब्राह्मण अपने इंद्रियों का गुलाम है वो ब्राह्मण जीवन के अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते। जो इंद्रियों की ही सत्ता को सर्वोपरि मानता है और जो इंद्रियों के ही सत्ता में डूबा हुआ है और इंद्रियों के भोग और इंद्रियों के सुख और इंद्रियों की वासनाओं में जिसका चित्त रमन करता है, वो परमात्मा अतीन्द्रिय सुख का कैसे अनुभव कर सकेगा। इसलिए उत्तिष्ट भारत, हे भारत के निवासियों, क्या करो, जागो। उषा का आगमन हो चुका है, भगवान आ चुका है। शुभ दिन, शुभ प्रातः, आज कहा सुबह, अर्थात निर्विघ्न। गुड मॉर्निंग अर्थात निर्विघ्न, विदाई के समय। तो स्वयं को जगाना है। ये जो भट्टी आज यहां हो रही है उसका एक लक्ष्य है जागरण, अवेकनिंग, अवेकनिंग विदिन। उत्तिष्ट जागृत प्राप्य वराण्यबोधत। जब तक उस लक्ष्य तक न पहुंच जाओ, जब तक गंतव्य तक नहीं पहुंचते, तब तक स्वयं को जगाना है, क्योंकि आत्मा स्वयं सो रही है और जब तक वो जागती नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती। सोना अर्थात निद्रा अर्थात विस्मृति। एक है जो सोना, स्थूल सोना, दूसरा सोना है अज्ञान निद्रा। आज हम चर्चा करेंगे ब्राह्मणों की 10 प्रकार की निद्राओं के बारे में, जिसमें ब्राह्मण सो रहे हैं, वह ब्राह्मण जो जानते हैं परमात्मा आ चुका है, वह ब्राह्मण जो जानते हैं संगम युग चल रहा है, वह ब्राह्मण जो अमृत वेला करते हैं, मुरली सुनते हैं, ये भी पता है, ये परमात्मा वाक्य है, और जो दिन भर सेवा करते हैं, शाम को नुमा शाम का योग करते हैं, चार्ट भी लिखते हैं, ब्रह्मा भोजन भी खाते हैं बनाते हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं अचेतन में फिर भी कहीं ना कहीं सो रहे हैं। स्वयं को जगाना है, दूसरा हमें नहीं जगा सकता, हम खुद ही जगेंगे। लक्ष्य ही है जागरण, संपूर्ण जागरण। तो सबसे पहली निद्रा जो बताई वो कौन सी? इंद्रियों की गुलामी की निद्रा। आंख वश में नहीं, कान वश में नहीं, मुख वश में नहीं, रूप रस स्पर्श शब्द गंध पांच है, पांचों ही जिसके वश में है वह है योगी। रूप जिसे आकर्षित ना करे, सीता ने क्या कर दिया आज की मुरली में? सुख की बाउंड्री को क्रॉस किया, क्रॉस किया और उधर रूप का आकर्षण, रूप रस जिह्वा, जो दिन रात डूबे हुए है जिह्वा के रस में, वो अति इंद्रिय रस का कैसे अनुभव करेंगे? स्पर्श हाथ, स्पर्श से उत्पन्न जो भी संसार में सुख है सभी अंततोगत्वा दुख में परिणीत होते हैं। ऑल टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंडिसिव टू पेन। शुरुआत में सुख मिलता है जहां जहां टच है, जहां जहां इंद्रिय इंद्रिय से स्पर्श कर रही है और सुख का अनुभव हो रहा है, जहां इंद्रिय और विषय वस्तु स्पर्श हो रही है और सुख का अनुभव हो रहा है, वो सारे सुख ऐसे सारे ही सुख आदि अंत वाले हैं और तुरंत फ्रस्ट्रेशन और दुख में रूपांतरित होते हैं। रूप रस स्पर्श शब्द, कान सुनना, संसार की चीजें सुनने का जिसको रस है, संसार के गीत, संसार का संगीत, संसार की बातें, विषयी बातें, विकार की बातें, वो भगवान की बातें कब सुनेंगे? जिनके कर्ण लगे हुए संसार की ओर व्यर्थ सुनने के लिए, परचिंतन और परदर्शन में जिनको स्वाद है, टेस्ट है, वो परमात्मा के ऐसे गुह्यतम वाक्य, राज विद्या राज गुयम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धम्यम सुसुखम कर्तव्यम, हे अर्जुन मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं सुन, वो राज विद्या है। राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम, पवित्र को पवित्र करने वाला यह ज्ञान है। इतना ऊंचा ज्ञान सुनने के लिए कान भी कैसे चाहिए? सोने का बर्तन। यदि उसमें किचड़ा भरा है, संसार भरा है, तो वो कान नहीं सुन पाएंगे उन वाक्यों को। गंध सुगंध, योगी अर्थात इंद्रियों का मालिक, बेगर अर्थात यह देह भी मेरी नहीं। आज सुबह की मुरली, तो सबसे पहली गुलामी कौन सी है? इंद्रियों की दासता। इंद्रियों का स्वभाव समझना है, इंद्रियों को जो दो उसे वो अच्छा लगता है और फिर धीरे धीरे उसी का आदि हो जाता है। उसको जो खिलाओ, उसको जो दो, धीरे धीरे उसे वही चाहिए। परंतु एक भी इंद्रिय यदि वश में नहीं तो बाकी सभी को घसीट कर लेके जाती है। स्वयं को चेक करो और चेंज। शीश महल है, बाबा ने कहा आज सुबह सब दिखाई देगा यहां। कौन राजदरबारी, कौन राज्य अधिकारी है? राजा अगर स्वयं ही गुलाम बनकर बैठा है और प्रजा उस पर राज्य कर रही है तो ऐसे राजा को क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली राजा, कमजोर शासक। और जब जब शासक कमजोर होगा, राज्य ज्यादा समय नहीं कर पाएगा। आलमगीर ज्यादा समय राज्य नहीं कर पाया, दूसरी गुलामी या दूसरी निद्रा जिससे जिसमें ब्राह्मण ही सोया पड़ा है, वो है आलस्य की निद्रा। पता सब है, ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो पता नहीं है। मुरलियों में जो आ रहा है, क्लासेस में जो है, सब पता है, परंतु आलस इतना प्रगाढ़ है कि पुरुषार्थ करने नहीं देता, और आलस की आदत बनी है। वो आलस नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े, परंतु यदि हम चाहे तो इस आलस से मुक्त हो सकते हैं। कौन सा आलस? अमृत वेले का आलस। कौन सा आलस? मुरली चिंतन का आलस। उठ गए अमृत वेला, परंतु अनुभव नहीं कोई। उठ रहे हैं परंतु अमृत वेला शक्तिशाली नहीं है। यह आलस की निशानी है। सूक्ष्म में मन नहीं चाहता कि पुरुषार्थ करे, इसलिए आलस का मार्ग ढूंढा है। कैसे जगाएंगे इस आलस से चेतना को? ज्ञान से। स्वयं स्वयं को जगाना है ज्ञान से। स्वयं स्वयं से बात करनी है। स्वयं स्वयं को बताना है कि यह समय कौन सा है और मैं क्या कर रहा हूं। अगर ऐसा ही पुरुषार्थ चलता रहेगा तो अंत में दुख होगा। सुबह से लेकर रात तक कौन कौन सी बातों में मैं आलसी बन चुका हूं? अमृत वेला, अमृत वेले के बाद के समय चिंतन का समय है, उस समय तो नहीं आलसी बन गया हूं। उसके बाद मुरली सुनना, चिंतन करने का समय है, भोजन बनाना, भोग लगाना। यहां कितनी माताएं ऐसी है जो रोज भोग लगाती है? लगभग सभी। और बाकी बाकी आज बोला है एक भी संबंध कम ना हो बाबा से। दो ही चीजें हैं, एक संबंध, एक संपत्ति। एक भी संबंध कम ना हो तो क्या उसको अपना बेटा नहीं बनाया है? माताओं ने बनाया है ना। तो जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया वो अपने बेटे को बिना भोजन कराई खुद ही खा लेती है। तो आज से संकल्प करना है कि जब तक उसको भोग नहीं लगाएंगे, 24 घंटे में एक बार तो जरूर, तब तक स्वीकार नहीं करेंगे। भाई ऐसे कितने हैं जो रोज भोग लगाते हैं? भाई ऐसे कितने हैं जो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं? नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रयश्यति। हे अर्जुन, जो मुझे पत्र पुष्प और फूल फल देते, पत्ता देते, कोई फूल दे दे, इतना भी लगे तो भी मैं दे दे तो भी मैं अनन्य भाव से स्वीकार करूंगा। भगवान भावना का भूखा है और प्रेम का प्यासा। उसे प्रेम चाहिए और भावना चाहिए। जितने अनन्य भाव से जो उसको स्वीकार कराते हैं, उतने ही अनन्य भाव से वो स्वीकार करता है और अपने प्रेम पाश में हम उसे बांध सकते हैं। तुम बच्चों ने बाप को अपनी प्यार की रस्सी में बांधा है, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। तुम बच्चों ने बाप को अपने प्रेम की रस्सी में बांधा है, तो बताओ बड़ा कौन, बांधने वाला या बंधने वाला? ऐसा प्रश्न अव्यक्त मुरली में बाबा ने कभी पूछा है। तो अत्यंत प्रेम से उसको भोग न लगाना यह भी आलस्य है। सेवाएं हैं और बुलाया जा रहा है, फिर भी बहाने बनाकर न जाना यह भी आलस्य है। नुमा शाम का समय चल रहा है और हम व्यर्थ के चीजों में लगे हुए, जबकि इतनी वो आवश्यक नहीं है, बजाय इसके कि बैठकर योग करें। नुमा शाम का योग न करना भी आलस्य है। 6:30 से 7:30 जैसा अमृत वेला शक्तिशाली हो, वैसा ही नुमा शाम का योग भी शक्तिशाली हो, चाहे 7 से 7:30। कोई कहे कि हम तो ड्यूटी पर है, हम तो ट्रैवलिंग में है, चाहे कहीं पर भी हो, बुद्धि को एकाग्र कर देना उस समय, रात को सोने से पहले उसको याद न करना, रात को सोने से पहले उसको धन्यवाद किए बिना ही सो जाना, ये भी आलस्य है। स्वयं को आलस्य जगाना है। आए थे तो जगे हुए थे, फिर धीरे धीरे निद्रा का आरंभ हुआ। ज्ञान में आने के बाद वो निद्रा से तो जाग गए, अज्ञान वाली, परंतु ये दूसरी निद्रा है। कौन सी? आलस्य की निद्रा। तीसरी निद्रा गफलत की निद्रा, ब्लंडर, ग्रेट ब्लंडर्स, मिस्टेक्स, श्रीमत का उल्लंघन, यह भी एक नींद है। कोई अगर रॉन्ग साइड से चलता है और पुलिस उसको पकड़ ले और वो कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था इधर से चलना है, तो क्या पुलिस उसको छोड़ देगा? वन वे है और गाड़ी डाल दी और पुलिस ने पकड़ लिया, तो आप कहेंगे कि मुझे तो पता नहीं था यहां से वन वे है, तो अच्छा अच्छा तुमको पता नहीं था जाओ, छोड़ देगा? इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नन। हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था। पता नहीं था वो तुम्हारी गलती है, एडमिशन तुमने लेट ली है, स्कूल तो कब से चालू हो गई, जनवरी में, तुम मई में आए, तुम ये नहीं कह सकते ये आउट ऑफ सिलेबस है। बाबा कहेगा रेफर अव्यक्त मुरली 1972, उसमें मैंने कहा था, सारी श्रीमत दे चुका है, परंतु फिर भी बार बार गलतियां करना, बार बार श्रीमत का उल्लंघन करना, बार बार गफलत की नींद में सो जाना, इस नींद से स्वयं को जगाना है। कौन जगाएगा? कोई नहीं आएगा जगाने, स्वयं हमें ही जगाना होगा खुद को। और जो जगाने आएगा वो दुश्मन की तरह मालूम पड़ेगा, क्योंकि नींद इतनी गहरी है और नींद इतनी अच्छी है और नींद में स्वप्न इतने अच्छे दिखाई दे रहे। अगर कोई जगाए दे किसी को तो क्या करता है? फर्स्ट रिएक्शन एंगर, क्रोध, पर वो नींद है और नींद में जो हो रहा है सब कुछ काल्पनिक है। वो जो स्वप्न दिखाई दे रहा है, वो जो सुखमय संसार खड़ा कर रहे हो, वो भी दुखदाई है। तो स्वयं को जगाना है गफलत की नींद से। हे योगी जागो, स्वयं से बात करना है, हे योगिनी जाग, जागो हे जागो हे जागो प्रिय आत्मन। जब तक हम नहीं जागते, उस नींद में दुख है, टाइम वेस्ट है। इस नींद से जागने के लिए पहले तो श्रीमत क्या है वो समझना है। बाबा ने हर चीज के लिए श्रीमत दी हुई है। यदि मूंझ जाओ तो क्या कहा है साकार मुरली में, बाप से पूछो। कुछ दिन पहले था कि बाप को चिट्ठी लिखकर पूछो, बाबा इस हालत में, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, राय लो बाबा से क्या करना चाहिए। रामायण में दिखाया है कि दशरथ आईने में देखता है और उसको बाल सफेद नजर आते हैं, तब उसे ख्याल आता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मेरा कोई संतान नहीं है। अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि ऐसा कोई मार्ग बताओ। ये नहीं कहता है कि मैं संतान विहीन हूं, ये नहीं कहता कि मुझे पुत्र दो, ये कहता है ऐसा कुछ बताओ जाई विधि होई नात हित मोरा, ऐसा कोई मार्ग बताओ जिससे मेरा हित हो, कल्याण हो। तो बाबा से कहो कि बाबा मुझे ऐसा मार्ग बताओ, ये नहीं कि मुझे ये करना चाहिए, इसमें मदद करो, वो कर रहा हूं उसमें मदद करो, वो कर रहा हूं, नहीं, ऐसा कोई मार्ग जिससे मेरा परम कल्याण हो। बाकी मनुष्य की इच्छाएं तो बहुत छोटी छोटी होती है, वो नहीं, ऐसा कुछ बताओ, ऐसी कोई टचिंग जो कि जिससे पुरुषार्थ यहां जो है वो एकदम से दुगुना हो जाए, ऐसा कुछ बताओ, अभी ये जो नींद है इससे जाग जाऊं, ये जो देह का वाहन खींच रहा है इससे जाग जाऊं। चौथी नींद जिससे हमें स्वयं को जगाना है, डिजिटल स्लीप, डिजिटल स्लीप। कौन सी स्लीप है ये? इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया। किसी ने लिख के भेजा था, ये नहीं समझ में आ रहा है इंटरनेट फ्री है या हम, कौन फ्री है, हम या इंटरनेट। साधन आए थे साधना को बढ़ाने के लिए, और साधन ही सबसे बड़ी बाधा बन जाए तो वो साधना क्या होगी। सुबह से लेकर व्यक्ति यदि डूबा हुआ है सोशल मीडिया में, टीवी में, इंटरनेट में, मोबाइल में, तो पुरुषार्थ कब करेगा, सारा समय मैसेजेस भेजने और लेने में जा रहा है। हैप्पी अमृत वेला, क्या अर्थ है ऐसे मैसेजेस का, टाइम वेस्ट। हैप्पी सदगुरुवार, थॉट फॉर द डे, क्या हमने पढ़ा वो थॉट फॉर द डे, क्या हम उसका स्वरूप बने। यदि हम उसका स्वरूप ही नहीं बने तो अधिकार क्या है किसी को भेजने का, क्या हम चाहते हैं दूसरों का कल्याण करें, और स्वयं का कल्याण अभी हुआ नहीं है। क्लास बहुत ही अच्छी है, सुपर क्लास फॉरवर्ड, तुमने सुनी पढ़ी, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, किसी और के पास गई, मेल मेल करके आगे, हर एक चाहता है दूसरा सुने और खुद ने नहीं सुना है, सारा समय इसी में जा रहा है। स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम कितना है आजकल, कहते हैं स्क्रीन टाइम, कितना समय देख रहे हैं उसको, सारा समय उसी में डूबे हुए हैं, फॉरवर्ड करने में, व्यर्थ के मैसेजेस भेजने में, फ्रेंड्स बनाने में, सर्फिंग करने में, ढूंढ रहे लक्ष्य क्या है वो पता नहीं, परंतु ढूंढना चालू है, क्या ढूंढ रहे उनको ही नहीं पता, घंटों लगे हुए हैं उसमें, डूबे हुए हैं उसमें। किसी ने मैसेज भेजा था हैप्पी श्राद्ध, बहुत गहरी निद्रा है, टाइम जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, संकल्प जा रहे हैं, और एक सूक्ष्म डिपेंडेंसी, सूक्ष्म निर्भरता, गुलामी, डिजिटल स्लेवरी। आज सुबह कहा नकली आकर्षण। सीता को क्या हुआ? आर्टिफिशियल अट्रैक्शन। सारे साधन बहुत अच्छे हैं, परंतु आग की तरह है, चाहो तो रोटी पका सकते हो या तो घर जला देगा पूरा। सेवाओं का उत्तम साधन है, परंतु यदि उसमें गलत मार्ग पर कोई चला गया तो वही मोबाइल, वही इंटरनेट, अंतरजाल, वही सोशल मीडिया पुरुषार्थ को तो क्या उस ब्राह्मण को ही नष्ट कर सकता है। ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बना देगा, ब्रह्मा कुमारी से शूद्र कुमारी। इतना साहस, उस इतना सामर्थ्य इसमें है। जितना हो सके सेवा के लिए प्रयोग किया और अलग हो जाओ। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया का प्रयोग ज्ञान, योग और सेवा, बस इन तीन चीजों के लिए होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हो रहा है तो वो टाइम वेस्ट है। यदि उसमें ज्ञान समाया नहीं है, योग समाया नहीं है और सेवाओं के लिए नहीं हो रहा है, आपसी लगाव झुकाव की वजह से हो रहा है, टाइम वेस्ट। पहले खुद का कल्याण, फिर दूसरों का कल्याण। हम सोच रहे दूसरों का कल्याण पहले करें, इसको भेजो क्लास, उसको भेजो, शायद ये क्लास वो सुन ले तो उसका कल्याण हो जाए। वो सोचता है तीसरे को भेजो, क्लास घूम रही है अनाथ, कोई उसको सुनने वाला नहीं है, खाली एक एक चिन्ह ज्यादा ऐड कर रहे हैं। बस सुनना भी है तो ऐसे सुनो कि वो सुनना समाते जाए। जो ज्ञान की बातें हैं और जो कानों पर पड़ रही है, वो दोनों एक होती जा रही है। केवल सुनना नहीं है, चाहे मुरली या क्लास, सुनते सुनते ही धारण करनी है, सुनते सुनते ही संकल्प कर लेने हैं ऐसे शक्तिशाली, क्योंकि उसी वातावरण में शक्तिशाली संकल्प जो किए गए वो साकार होंगे। संकल्प से सृष्टि है, एक शक्तिशाली संकल्प अब तक के विकारी जीवन को परिवर्तन कर सकता है, एक शक्तिशाली जीवन अब तक की सारी नींद को नष्ट कर सकता है। एक व्यक्ति सो रहा है और बहुत अच्छा स्वप्न देख रहा है और खुश हो रहा है, एक दूसरा व्यक्ति सोया हुआ है, स्वप्न देख रहा है, उसका घर जल रहा है, दुखी हो रहा है, एक तीसरा व्यक्ति उसी कमरे में है जो जागा हुआ है, जो पहला व्यक्ति है स्वप्न में है, बहुत सुंदर घर उसको दिखाई दे रहा है, मेरा घर है, वो उस घर के लिए खुश हो रहा है जो है नहीं। दूसरा है वो स्वप्न में रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्योंकि घर जल रहा है, उस घर के लिए रो रहा है जो है नहीं, परंतु जो जल रहा है, परंतु जल नहीं रहा है। तीसरा एक है जो देख रहा है दोनों को, उसे ना तो गम है ना तो खुशी, वो जागृत है, वो जाग रहा है। तीनों में से मैं कौन हूं, स्वयं से पूछना है। तो चौथी निद्रा कौन सी बताई? डिजिटल स्लीप। जितना हो सके सेवा के लिए प्रयोग किया अलग, बहुत सारे खोल के रखे हैं, YouTube और ये और वो और वो, जिसकी आवश्यकता नहीं है। सुनना है WhatsApp से सुन सकते हैं, और कहीं और मीडिया में जाने की जरूरत नहीं है, ब्लैक होल है वो। YouTube इज नोन एज ब्लैक होल, सक कर लेता है, खींच लेता है आत्मा को, इसके लिए वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। डिसेबल। अगली नींद फैमिलियरिटी की नींद, संबंधों में फैमिलियरिटी। दो व्यक्तियों के बीच संबंधों में घनिष्ठता। चालू होती है स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप से और एंड कहीं और ही हो जाता है। चालू होता है संबंध सेवा से और एंड होता है आपसी लगाव से, झुकाव से, आकर्षण से। यह भी एक नींद है। फैमिलियरिटी की निद्रा, फैमिलियरिटी का नशा बाबा ने कहा है। ऊपर से सेवा का आवरण है, सेवा का संबंध है, परंतु अंदर से लगाओ, अंदर से हलचल, शायद वासनाएं। इसके लिए अपने सभी संबंधों को डिटैच करते जाना, डिटैच्ड रिलेशनशिप्स। जो व्यक्ति कहीं पर भी फंसा है बोड़ नहीं पाएगा। आज कुमारियों से मुलाकात, कुमारी अर्थात स्वतंत्र, कुमारी अर्थात जिसने किसी और के गले में हार नहीं पहनाया है, केवल एक बाप के गले में हार पहनाया है। क्या पाओगे उधर? दुख, अशांति की चमाट और फिर दो रोटी। ये भी नहीं कहो हम कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं। क्या कहो? जैसा बाप वैसी मैं। कितने ऊंचे सोमान है। छोटी छोटी कन्याओं को बाबा कह रहे हैं, अहमदाबाद हॉस्टल की ये कन्याओं से मुलाकात की मुरली है, भगवान इतने ऊंचे सोमान दे रहा है, कह रहा है कहीं पे भी नहीं फंसो। और यदि हम फंस रहे हैं, केवल कुमारियों की बात नहीं है, सभी ब्राह्मणों की बात है। ब्राह्मण अर्थात ही स्वतंत्र, स्कॉलरशिप लेने वाले, शिव शक्ति, बाल ब्रह्मचारिणी। कितनी पावर है इस शब्द में, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। है शक्ति इसमें? तो सभी फिर से योग में बैठेंगे, इसी स्वमान का हम अभ्यास करेंगे। तपस्वियों में महातपस्वी, ऋषियों में राज ऋषि, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता मेरा श्रृंगार, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। संपूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित, ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी, मुझ आत्मा से संपूर्ण शरीर में पवित्रता की किरणें फैल रही है। एक एक इंद्रिय शांत होते जा रही है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। संपूर्ण पवित्रता का अनुभव, पवित्रता मेरा निज स्वरूप है, स्वधर्म है। पवित्रता के तेज से मैं आत्मा स्वयं प्रकाशित होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रही हूं। मुझ आत्मा से पवित्रता की श्वेत रश्मियां चहुओर फैल रही है। संपूर्ण वातावरण में पवित्रता, पवित्रता का जैसे समंदर लहरा रहा है। अब धीरे धीरे संपूर्ण मौन में बिना कोई आवाज के संपूर्ण आत्मिक दृष्टि में कोई हलचल नहीं, गहन शांतता के साथ सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे बिना कोई आवाज के। संपूर्ण मौन आत्मिक दृष्टि, आत्म अभिमानी स्थिति, मैं परम पवित्र फरिश्ता हूं। अभी सभी अपने स्थान पर बहुत धीरे धीरे आत्मिक दृष्टि देते हुए घूमेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। अपने स्थान पर घूमेंगे, एक चक्कर लगाएंगे बहुत धीरे। आत्माओं की महफिल है, देव कुल की महान आत्माएं एकत्र हुई है। केवल मस्तक पर नजर, शरीर जैसे है ही नहीं। मणियों का आगार एक बार फिर घूमेंगे, चमकती हुई मणियां है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। एक बार फिर घूमेंगे बहुत धीरे। संपूर्ण पवित्रता का अनुभव, बाल ब्रह्मचारियों का यह समागम, फिर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आत्मिक दृष्टि, आत्म अभिमानी स्थिति, कोई आवाज नहीं, संपूर्ण मौन। मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें चहुओर फैल रही है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। ओम शांति। अगली नींद दुख की नींद। भगवान मिलने के बाद भी जिसके जीवन से दुख नहीं मिटा वो जरा हाथ खड़ा करना। भगवान मिलने के बाद भी बीच बीच में दिन में एक बार आंसू आते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। आंसू आते हैं बहन जी? आंसू भी आते हैं। भगवान मिल गया और पिछले एक हफ्ते में जिस जो एक बार रोया वो हाथ खड़ा करना। इंद्र सभा है, भगवान इधर उधर नहीं देखना, बाकी सामने देखो। भगवान मिल गया और फिर भी दुख ना मिटा तो क्या कहेंगे। आज सुबह की अव्यक्त वाणी में 6 प्रकार के दुखों की लिस्ट बाबा ने गिनाई है। सभी ने सुनी आज की अव्यक्त वाणी, बेगमपुर के बादशाह अर्थात गम से परे, बेगमपुर के बादशाह अर्थात सुखमय संसार में आ गए, बेगमपुर के बादशाह अर्थात सुख की शैया में जो झूल रहे हैं, डोल रहे हैं, अगर बाउंड्री को क्रॉस किया तो दुख, शोक वाटिका, दुखस्य कौन कारणम। भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बेगमपुर का बादशाह बनाया, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया, सुख स्वरूप बनाया, संपत्ति दी, सबसे बड़ी संपत्ति इस संसार में ज्ञान धन के अतिरिक्त और कोई संपत्ति बड़ी नहीं है, ऐसी ज्ञान धन की अथाह संपदा मैंने दी, ऐसे संबंधों की संपत्ति मैंने दी, उसके बाद में दुख नहीं मिटा। कारण भी बताया और 6 प्रकार के दुख गिनाए। पहला तन का दुख, तन की बीमारी आ गए, दुख। अब तक सब ठीक था, जैसे ही पता चला कैंसर है, जैसे ही पता चला डायबिटीज है, जैसे ही पता चला बीपी है, जैसे ही पता चला कोई रेयर बीमारी है, जैसे ही पता चला ऐसी बीमारी जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था वो आ गई, और जैसे ही बीमारी का पता चला उस दिन से दुख की शुरुआत हो गई। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के 1995, यदि तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाए और उस मेहमान की तुम अच्छी खातिरी करो और फिर वो सुख बहुत ही खुशी खुशी से विदा लेता है, उसी तरह यदि कोई बीमारी आ जाए तो कहो वाह व्याधि वाह, तो व्याधि भी खुश हो जाएगी और खुशी से विदा लेगी। दुखी नहीं हो जाओ, ये मुझे क्यों आई, ऐसा क्यों हुआ, आई अच्छा है आई, हिसाब चुकत हो रहा है, दुखी नहीं होना है। मिला क्या है, संपत्ति मिली है, धन मिला है, ज्ञान का संबंध मिले है, प्राप्ति स्वरूप बने हो, सुखमय संसार में आ गए हो, सूखी पहाड़ियां नहीं है, मधुबन हीरे तुल्य है, त्याग का भाग्य है, बेगर से प्रिंस बन गए हो यहां आकर। बीमारी आएगी, हिसाब चुकतू होगा, सब होगा, कोई नहीं छूट सकता इससे, जिसने जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। यह संसार कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तसफल चाखा, जन्म जन्म जो जो जिसने जैसा जैसा किया है वो तो चुकतू करना पड़ेगा। तन की बीमारी, तन का दुख, दुख की लहर भी ना आए बेगमपुर के बादशाहों के पास, दुख का नाम निशान ना हो बेगमपुर के बादशाहों के पास, बिन कौड़ी बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, बेताज बादशाह, अदृश्य बादशाह, दिखाई ऊपर से कुछ नहीं देता पर है बादशाह, क्योंकि हमारी बादशाही अलौकिक है, कोई छीन नहीं सकता इस बादशाही को, कोई लूट नहीं सकता इस बादशाही को। तन, दूसरा है मन का दुख, मन के व्यर्थ संकल्पों की हलचल के दुख की लहर, व्यर्थ संकल्प आ रहे अर्थात ज्ञान के समर्थ संकल्प नहीं है, अर्थात ज्ञान का चिंतन मनन अध्ययन नहीं है, इसलिए व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं। मेरा क्या होगा, मेरी देखभाल कौन करेगा, मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे, धोखा तो नहीं देंगे, जिनको अपने अपना कहा वो छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, डर भय असुरक्षा इनसिक्योरिटी फियर, व्यर्थ व्यर्थ है मन में अर्थात ज्ञान का अभाव है, ज्ञान का अकाल पड़ा है, ज्ञान केवल डायरियों में ही है, बुद्धि में नहीं है, केवल डायरियों में है, मुरलिया बहुत लिखी है कितनी डायरिया भरी होगी पता नहीं अब तक माताओं ने, तो कितनी डायरिया भर दी मुरली लिख लिख कर, परंतु केवल डायरियों में है, इधर भी तो रखना है, बुद्धि रूपी डायरी पर लिखो, तन मन धन। तीसरा है धन की अप्राप्ति या कमी, यह भी दुख की लहर लाता है, परंतु जहां सूक्ष्म धन है वहां स्थूल धन स्वतः आएगा। व्यक्ति स्थूल धन के पीछे इतना भाग जाता है कि सूक्ष्म धन को लेना ही भूल जाता है, परंतु इस ईश्वरीय मिशनरी कार्यकारिणी का नियम है कि जहां सूक्ष्म धन है स्थूल धन वो खींचेगा, अपने आप आएगा, चरणों में सारा धन होगा, भागना नहीं पड़ेगा पागलों की तरह, धन धन धन, पैसा पैसा पैसा, संपत्ति संपत्ति संपत्ति। तन मन धन। चौथा कौन बताएगा आज की मुरली? छह प्रकार के दुख गिनाए हैं बाबा ने आज, वायुमंडल और वातावरण। वायुमंडल और वातावरण में दुख होगा क्योंकि संसार की आत्माएं दुखी है, उदास है, दिल शिकस्त है, कुछ नहीं है जीवन में, निराशा है, नैराश्य छाया हुआ है, और जो आत्मा खुद शक्तिशाली नहीं है रंग जाएगी। जिसके पास ज्ञान की अथाह संपदा नहीं है कलर्ड हो जाएगी, वो भी उसके ऊपर प्रभाव हो जाएगा उस दुख का, और उनके दुख को देखकर, उनकी दर्द उनके पीड़ा को देखकर खुद भी दुखी हो जाएगा। हम हैं दुखहर्ता, दुख दूर करने वाले, पर खुद ही दुखी। डॉक्टर सोच रहा है कि ये मरीज कितना दुखी है, और उसकी बीमारी के साथ खुद भी इतना दुखी हो गया कि ट्रीटमेंट करना भूल कर उसके साथ ही बैठ कर रो रहा है, तो क्या कहेंगे डॉक्टर को? उसको ठीक करने के लिए तीसरे को लाना पड़ेगा। हमारी ऐसी स्थिति तो नहीं, संसार में दुखों के अंबार लगे हुए हैं, किसी भी घर में जाओ दुख ही दुख। कोई ऐसा घर है संसार में जहां दुख ना हो? सभी दुखी है, दुखालय दुखधाम अनित्यम असुखम लोकम। हे अर्जुन, यह संसार अनित्य है, असुखम लोकम, सुख यहां नहीं। पांचवा आज की मुरली से, स्वयं के स्वभाव संस्कार की कमजोरी या दूसरों के स्वभाव संस्कार की कमजोरी, यह दुख का कारण है। सबसे ज्यादा दुख व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति नहीं दे रहा है, मेरे अपने संस्कार मुझे दुख दे रहे हैं, मेरे अपने सूक्ष्म विकार के संस्कार, मेरे अपने सूक्ष्म इच्छाएं, मेरी अपनी सूक्ष्म अतृप्त कामनाएं ही मेरे दुख का कारण है, मेरी अपनी सूक्ष्म नाम मान शान की कामना मेरे दुख का कारण है, मेरी अपनी दमित भावनाएं, सप्रेस्ड इमोशंस एंड डिजायर्स। एक संस्कार व्यक्ति का पीछे किए कर रहा है, कब से कर रहा है, 10 साल 20 साल से छोड़ता नहीं, ऐसा लगता है समाप्त हो गया, पर अचानक कहीं से आ जाता है भूत की तरह, जिसको हमने सोचा था ये मर चुका है, फिर आता है, और वही दुख का कारण है। अगला, संबंध संपर्क का दुख। संबंध संपर्क बनाए ही ऐसे रखे हैं कि जिसमें बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, इसलिए दुख है। सेवाएं बहुत कर रहे हैं परंतु सेवाओं के पीछे कामना है कि सेवा होने के बाद हमारा नाम लेना चाहिए, और बहन जी ने अगर सेवाओं के पास बाद में हमारा नाम नहीं लिया तो दुख। सबका नाम लिया पर मेरा नाम नहीं लिया, हमने तो बहुत सेवाएं की थी, नाम के लिए सेवा कर रहे थे। जो जो सेवा कर रहा है उसका अपने आप जमा हो रहा है ऊपर, और जहां नाम के लिए सेवा होगी मार्क्स कट हो जाएंगे। मम्मा 3 मास तक बेंगलोर रही, बेंगलोर से मम्मा आई, मम्मा को पूछा गया, मम्मा क्या क्या सेवाएं की, कैसी थी सेवा? मम्मा ने कहा अच्छी थी, फुल स्टॉप, बस, कोई वर्णन नहीं, कोई विस्तार नहीं, ये किया वो किया यहां किया वहां किया, कुछ नहीं। वो तो भाई ने बताया जो उनके साथ था कि कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं मम्मा करके आई है, यहां हमारी एक सेवा और 50 फोटो, और खुद ही भेज रहे हैं दूसरों को कि देखो ये हमने सेवा की है, और खाली देखो नहीं कुछ तो भेजो साथ में। अगर ऐसा नहीं भेजा तो दुखी। अमृत वेला उठते ही रात में पोस्ट कर दिए थे फोटो, उठते ही देखा कोई भी लाइक नहीं आया, दुखी। सेवा किस लिए की थी? दूसरों की स्तुति के लिए, प्रशंसा के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए। अपनी सेवाओं को निष्काम करते जाओ, सेवा कर दी और भूल जाओ, सेवा कर दी और काम पूरा हुआ, चलो आगे। तो छह प्रकार के दुख से बेगमपुर के बादशाह परे है। हां, दुखी होते हैं तो बाप दादा भी सोचते हैं क्यों दुखी हुए, जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। सीता को क्या किया, आकर्षण हुआ और गई उसके पीछे, और शोक वाटिका, कुछ ना कुछ संसार का आकर्षण, नकली वस्तु का आर्टिफिशियल आकर्षण हुआ। स्वयं को बैठ के समझाना है, हे मन तू कहां भाग रहा है, तुझे काम चाहिए या राम, हे योगी क्या चाहिए। ईश्वरीय संपदा इधर है, संसार की संपदा इधर है, ईश्वरीय संबंध इधर है, संसार के संबंध इधर है, ईश्वरीय सुख यहां है, संसार के दुख यहां है, स्वराज्य इधर है, गुलामी इधर है, खुशी इधर है, दुख इधर है, नशा इधर है, यह संसार का नशा उधर है डुबोने वाला, क्या चाहिए। हे बेगमपुर के बादशाह हो, जागो, गम से जागो, दुख से जागो। तो अगली नींद कौन सी है? दुख की नींद। क्यों मैं दुखी हूं, कारण को ढूंढो, गहराई में जाओ, उस दुख की गंगोत्री तक पहुंचो जहां से दुख बह रहा है। जरूर कोई ना कोई कामना है, मोह है, काम वासना है या विकार है, सूक्ष्म में उस तक पहुंचो। यह शुरू कब हुई, यह जो दुख की कहानी, दुख का जो सिलसिला, जो दुख आया है जीवन में, शुरुआत कहां से है? एक साल पहले, दो साल पहले? क्या संबंध इसका कारण है, या व्यक्ति इसका कारण है, या वैभव, वस्तु, साधन, या समय? ये वर्तमान में जो दुख है जीवन में, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, उसको उसी स्टार्टिंग पॉइंट में जाकर भस्म करना होगा। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गलत हुआ है जरूर। यदि संबंध दुख का कारण है, वो पति पत्नी का संबंध है, या भाई बहन का संबंध है, या बहन बहन का संबंध है, या टीचर स्टूडेंट का संबंध है, या फ्रेंड्स का संबंध है, कोई भी संबंध, या बॉस और एम्प्लॉय का संबंध है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है। साक्षी होकर उस पॉइंट तक पहुंचना, देखना और फिर उसको नष्ट करना। तो दुख की निद्रा कितनी हुई? छह। सातवीं निद्रा अलबेलेपन की निद्रा। एक बताया था आलस, लेजीनेस, यह है अलबेलापन, अर्थात केयरलेसनेस, लापरवाही। पहला स्थूल है, यह सूक्ष्म है। लापरवाही, केयरलेस हो गए, अंदर इतने ढीठ साहसी हो गए हैं कि अब परवाह नहीं करते, मर्यादा क्या कहती है, श्रीमत क्या कहती है, हर चीज के लिए श्रीमत मिली हुई है, उस श्रीमत का सूक्ष्म में जबरदस्ती जानते हुए, जानबूझकर, पता होते हुए भी परवाह न करना, अर्थात अलबेलापन। पता है यह समय किसका है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का समय है। पता है मधुबन में जाने के बाद हम मधुबन जा रहे हैं तपस्या के लिए, परंतु मधुबन जाने के बाद में भी वहां पर व्यर्थ देखना चालू करते हैं। मधुबन जाने के बाद मधुबन का समय है तपस्या का, मौन का, एकांत का, मुरली चिंतन मनन का, यह न करते हुए साइट सीइंग में लगे हुए हैं, शॉपिंग में लगे हुए हैं, खान पान में डूबे हुए हैं। आज क्या बना, आज क्या बना, खाऊं खाऊं, ये खाऊं कि वो खाऊं, किधर क्या बना है उसकी खोज में है। किसी के थाली में कुछ दिखा, कहां से लाया, क्या इसलिए मधुबन गए थे या मधुबन निवासियों को देखने गए थे, ये लोग भी ऐसा कर रहे। वो जो भी करे, तुम्हें क्या करना है, व्हाट इज दैट टू यू, तुम किस लिए जा रहे हो, इतना कम समय मिल रहा है जाने को, 6 मास में एक बार या साल में एक बार, उसमें भी वहां जाकर आवाज 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 आवाज, इससे मिलू उससे मिलू उससे मिलू इससे मिलू, मिलना मिलना ही चालू है बस। बाबा का कमरा वहां से पुकार रहे, आओ आओ आओ, हम कह रहे बाद में, अभी मिलना बाकी है, अभी साइट सीइंग बाकी है, अभी शॉपिंग बाकी है, जा किस रहे लिए रहे। और फिर मधुबन बाबा से मिले, कोई खास अनुभव नहीं, और यहां आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें, हम बाबा से मिले और हमको आंसू आए और हमको बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बाकी हुआ कुछ नहीं। क्योंकि अनुभव होगा कब, अनुभव ऐसे इतना सस्ता नहीं है अनुभव, एक्सपीरियंस इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर। मधुबन पहुंच गए, व्यर्थ की बातें में लगे हुए हैं, भोजन और घूमने फिरने में लगे हैं, और भगवान के सामने बैठ जाओ और अनुभव हो जाएगा। तप की भूमि चाहिए, वैराग चाहिए, मौन चाहिए और एकांत चाहिए और गहन अध्ययन चाहिए, तभी अनुभव हो सकता है, नहीं तो जो अनुभव हो रहे हैं झूठ है, मिथ्या है, छल है, दिखावा है, आडंबर है, दंभ है, हिपोक्रेसी है। स्वयं स्वयं को व्यक्ति छल रहा है, आत्मवंचना, सेल्फ डिसेप्शन। क्यों जा रहे हैं फिर, यहीं बैठे रहो। यदि आत्मा में बल भरना है तो तप से भरेगा, साइट सीइंग से नहीं, भोजन से नहीं, व्यर्थ की बातों से नहीं, गॉसिप से नहीं, परचिंतन परदर्शन से नहीं। वहां जा रहे हैं तो तैयारी चाहिए मन की, लक्ष्य से जाना है, मुझे ऐसी ऐसी तपस्या करनी है, लक्ष्य से जाना है, ये चीजें हैं जो मुझे नहीं करनी है, जो हर बार मैं करता हूं और उसकी वजह से डिस्टर्ब होता हूं। अलबेलापन, अगली नींद है धन की नींद, लोभ, जो इसके पहले भी हमने बताया, परंतु यह भी एक नशा है, धन का नशा, धन कमाने में लगे हुए, किस लिए, बाबा की सेवा के लिए, कारण तो बहुत अच्छा है, अलौकिक कारण है ऊपर से दिखाई देने में, पर उस धन कमाने की होड़ में पुरुषार्थ खो गया है, जिसके लिए धन कमा रहे उसी को भूले हुए हैं। ऐसा धन उसको नहीं चाहिए, क्या उसके पास धन की कमी है, किसी को भी टच करा सकता है बाबा, किसी को भी, संसार में करोड़पति बैठे हुए, किसी की बुद्धि को टच करा दिया, सारा पैसा लाके डाल देगा। परमात्मा तालाब गरीबों की पाई पाई से भरेगा, परमात्मा महावाक्य है, परमात्मा तालाब गरीबों की पाई पाई से भरेगा। बाप वहां नहीं जाते, बाप अमीरों की महफिल में नहीं जाते जहां 56 प्रकार के भोग लग रहे, बाप गरीबों की महफिल में आते हैं जहां पर सूखी रोटी है, साकार महावाक्य है बाबा के। फिर भी व्यक्ति धन के पीछे ऐसा पागल है कि दिन रात लगा हुआ है, और बताता सबको यही है, बाबा के लिए कर रहे हैं। और दिन रात, और फिर कहते पुरुषार्थ के लिए टाइम नहीं है, ट्रैवलिंग में 2 घंटा जाता है, ऑफिस में 10 घंटा जाता है, किसने बोला करने को। इंग्लिश में कहावत है, ही हू गिव्स टू गॉड सेकंड प्लेस इन लाइफ गिव्स हिम नो प्लेस। वो व्यक्ति जो भगवान को अपने जीवन में दूसरे नंबर में रखता है, वो उसे किसी भी नंबर में नहीं रखता। पैसा नंबर वन है या भगवान? पैसा आज है, कल नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। 10 साल तक व्यक्ति सोचता है कि मेरा अपना घर हो, 10 साल तक मेहनत करता है करता है करता है और एक दिन अपना घर बनाता है, पर उस 10 साल बेचैन रहता है, भागने के संस्कार। घर जब बन जाता है, बेचैनी के संस्कार भी बन जाते हैं पक्के। अब घर है, पैसा है, संपत्ति है, परंतु फिर भी दुखी है, क्योंकि 10 साल के दुखी होने के संस्कार साथ साथ अभी चल रहे हैं। पहले दुखी इसलिए था कि घर नहीं था, अभी घर है परंतु संस्कार साथ में है, इसके लिए दुख से तो छूटा ही नहीं। धन की निद्रा है। अगला है काम की निद्रा, द स्लीप ऑफ लस्ट, काम वासना की निद्रा। योगी भव पवित्र भव का वरदान ले लिया, बाल ब्रह्मचारी और बाल ब्रह्मचारिणी भगवान ने कह दिया, उसके बाद भी देह का आकर्षण होना, उसके बाद भी देह की तरफ आकर्षित होना, देह को देखना, देह को स्पर्श करना, क्या है इसमें भरा? चमड़ी के पीछे क्या है? बहुत सौंदर्य है, कहां है सौंदर्य? जाओ सरकारी अस्पताल में, वो कैंसर के मरीज है उनके उनको जाकर देखो, वो डायलिसिस के पेशेंट से उनको जाके देखो, वो जो गरीब टीबी के मरीज है उनको जाकर देखो, कहां है सौंदर्य? वो जो बूढ़े लोग हैं, दांत गिर गए, सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखता नहीं, वेयर इज द ब्यूटी? और इसी देह के पीछे व्यक्ति दीवाना है। बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन के अतिरिक्त यह देह क्या है? और ये तो सबसे बड़ी निद्रा है, सबसे बड़ा नशा है। आज सुबह की अव्यक्तवाणी, कुमारों से मुलाकात। उस दुनिया में चले जाते हैं कुमार, क्यों? कुछ तो आकर्षण होता होगा, इसलिए तो जाते हैं। यहां सब कुछ मिल रहा है, परंतु पुरानी दुनिया में फिर भी चले जाते हैं। तुम स्थापना करने वाले, वो विनाश करने वाले, फिर भी विनाश करने वालों का संग कर लेते हैं, क्यों? कुछ तो खींचता होगा, विनाश नहीं खींचता, देह खींचती है। कारण ऊपर से भिन्न भिन्न, बहाने, खींचने वाला है देह। देह को देख लेना, देह की वास्तविकता क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब में दुख है। इस संसार के दुखों का दर्शन कर लेना विधि है दुखों से मुक्त होने की। यहां कुछ भी जाओ करने, दुख है उसमें, इसलिए जाना ही नहीं है। बाउंड्री क्रॉस की तो सुखमय संसार से दुखमय संसार। काम का, काम की निद्रा। उसके बाद है व्यर्थ की निद्रा। जिसे हम समझ रहे हैं समर्थ है, शायद वो व्यर्थ है। जो टीवी पर दिखाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हम लोग तो खाली जानना चाहते हैं पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है और क्रिकेट में क्या हो रहा है और इस सीरियल में क्या हो रहा है। टीवी सीरियल कौन कौन देखता है? हाथ खड़ा करना चाहिए। देखते सारे पर हाथ नहीं खड़ा कर रहे। इंद्र सभा है, कितने बड़े बड़े कार्य करने हैं, संसार को जगाना है, पवित्रता का नया धर्म स्थापन करना है, और हम लगे हैं टीवी देखने में। और कोई कहते बहुत अच्छे सीरियल है, सीरियल बहुत अच्छे है, परंतु जो राम का पार्ट प्ले कर रहा है उसका अपना क्या चरित्र है? वो विश्व कल्याण के लिए राम की भूमिका बजा रहा है, किस लिए कर रहा है वो? या उसकी भावना है कि मैं सारे विश्व का कल्याण करूं। तथा कथित धार्मिक धारावाहिक, एक एक पात्र का व्हाट इज द स्पिरिचुअल कैलिबर, आध्यात्मिक चरित्र क्या है उन पात्रों का, क्या बाल ब्रह्मचारी है सभी, क्या पवित्र है, क्या आत्मा को और परमात्मा को जानते हैं, और जो आत्मा को और परमात्मा को जानने वाले हैं और जो भगवान की पढ़ाई रोज पढ़ते हैं वो उनको देखने जाते हैं। तो यह समय का सदुपयोग है या दुरुपयोग? जगाना है स्वयं को इस निद्रा से, जो जो व्यर्थ है उन सब से। लास्ट विकार, निगेटिव की नींद, यज्ञ के प्रति निगेटिविटी, ब्राह्मण परिवार के प्रति निगेटिविटी, यज्ञ की आत्माओं के प्रति निगेटिविटी, यह नींद है। मधुबन के प्रति निगेटिविटी, आए थे भक्ति में मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ज्ञान में आने के बाद इन निर्गुण हारों में कोई गुण नहीं। इस परिवार इतना कुछ देख लिया कि सबके प्रति थोड़ा 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 निगेटिव हो गया है, यह भी नींद है। यज्ञ किसका है यह भूल रहे हैं, किसके प्रति निगेटिविटी? उनके प्रति जिन्होंने अपना जीवन स्वाहा कर दिया है यज्ञ के लिए, उन बहनों के प्रति जिन्होंने एक एक ने अपने जीवन और अपने यौवन को यज्ञ की वेदी पर अर्पण किया है, जिन्हें स्वयं भगवान ने चुना है, उनके प्रति, उन्हीं के प्रति जिनकी मंदिरों में भक्त पूजा कर रहे हैं, उनके उन देवियों के प्रति कौन है वो? क्या साधारण आत्मा है? वही है शिव शक्तियां, भक्त जिनको पुकार रहे हैं, पाप नाशिनी साक्षात दुर्गा। इन सभी निद्राओं से स्वयं को जगाना है। जगाएंगे? पहली निद्रा इंद्रियों की गुलामी, दूसरी आलस, तीसरी गफलत, चौथी डिजिटल स्लीप। माताओं को समझ में आ गया सभी डिजिटल स्लीप? माताएं भी डिजिटल है आजकल, डिजिटल मदर्स। अगली नींद फैमिलियरिटी, फैमिलियरिटी माताओं को समझ में आ गया? अंग्रेजी शब्द है घनिष्ठता संबंधों में। और अगली नींद दुख की, अगली नींद अलबेलेपन की, अगली धन, अगला काम, और अगला व्यर्थ, और लास्ट निगेटिव। इन सभी नींद से स्वयं को जगाना है, और जब तक न जाग जाए तब तक बेचैन रहना है। स्पिरिचुअल डिस्कंटेंट, दैवी असंतोष बना रहे निरंतर। बाबा कहते हैं संतुष्ट मनि भव, हम कह रहे हैं दैवी असंतोष कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं मैं जाग रहा हूं, इसका असंतोष, डिवाइन डिस्कंटेंट। ठीक है, अभी हम एक दो तीन मिनट का ब्रेक लेंगे।